विशेष करके कार्तिक महीने में, अरे इस महीने में आषाढ़ महीने में सूर्य जब कर्कट रेखा पर आता है मेष राशि, और उस समय संक्रांति से ये आषाढ़ महीने से लेकर और कार्तिक महीने के तक ये करना चाहिए। हम लोगों में प्रारंभ से ही देखा, महाप्रभु जी के समय से चातुर्मास से व्रत पूर्णिमा से आरंभ करते हैं, उसी दिन खौर होती है और उसी दिन से हम लोग आरंभ करते हैं। महाप्रभु जी ने भी वैसा ही किया था, और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी जब सब तरह से बंद हो गया था ये चातुर्मास से तरह से, विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय में एकदम बंद ही कर दिया। इसलिए जो एकांतिक हैं उनके लिए नहीं, कुछ लोग कहते थे विशेष करके रागानुगा लोगों को नहीं करना चाहिए, उन लोगों को क्या जरूरत है, परमहंस लोग ही सब व्रत का किस लिए करेंगे आचरण, इसलिए बीच में बंद हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर जी और इसके बाद में प्रभुपाद जी आए तो उन्होंने बतलाया, वैदिक भक्ति रत जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग करण प्रवेश। वैदिक भक्ति में हम लोगों को चलना चाहिए, उसके नियम कानून को पालन करके चलना चाहिए। यदि वही नहीं कर सकता तो रागानुगा में क्या प्रवेश होगा, इसलिए इन विधियों को पालन करके हम लोगों को चलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा था, उनका एक फुट है वहाँ पुणे, देखो हमारे शिष्यों में बहुत से ऐसे होंगे, और हमारे गुरु जी ने भी हम लोगों से कहा था, देखो चातुर्मास का एक फोटो ले लो हमारा और इसको रखना सब समय मंदिर में, नहीं तो लोग कहेंगे जैसे आपके गुरुजी नहीं मानते थे, हमारे गुरुजी मानते ही नहीं थे ये सब, इसलिए ये रख दो। तो सचमुच में हम देखते हैं अब ये गुरुजी का वो फोटो हम लोग नहीं रखते, प्रभुपाद जी का ये फोटो नहीं रखते, तो लोग कहते जिसे ये सब की क्या ज़रूरत है, तो एकांतिक वैष्णव है प्रेमी है तो वो अरे दाढ़ी कटा लेने से क्या होता है, इसे भक्ति नष्ट हो जाती है, एक बैंगन खा लिया ठाकुर जी को भोग देते हैं हमारा व्रत नष्ट हो जाएगा, परवल खा लिया है या मसूर दाल खा ली या कुछ कर लिया है, एकादशी यदि नहीं करें तो क्या नहीं है, एकादशी करने से भक्ति हो जाएगी। कुछ दिनों में ऐसे लोग भी कहेंगे ये व्रत करने की कोई जरूरत नहीं, इसे इन लोगों ने कहा। और पत्रिकाओं में उन्होंने कहा जो ये प्रबंध हमारा छाप दो, तो कहेंगे कहाँ उन्होंने कहा लिखा है और कहाँ पालन कर, इसलिए गुरु जी हम लोगों के जब तक थे खूब कठोरता के साथ में पालन करते थे इन व्रतों का। हमारे प्रभुपाद जी थे बड़ी कठोरता के साथ में पालन करते थे, जब तक वो थे इस जगत में प्रकट थे तब तक उनके शिष्यों में किसी का भी ऐसा साहस नहीं था जो चातुर्मास्य व्रत न करे, सबको विधिवत केश दाढ़ी ये सब रखना पड़ता था, बैंगन और ये जो चीज़ें ये बताया वो विधि पूर्वक पालन किया जाता था। पत्तल में खाना, पत्तल में वो जो पत्तलों में भी साल का पत्ता
केला
और एक होता है हरा सा वो बड़ा सा कमल का पत्ता है,
कमल
केले का पत्ता, केले का पत्ता साल का पत्ता प्रशस्त है सबसे, केले का पत्ता और पवित्र होता है।
कमल,
कमल का थोड़ा सा राजसिक भाव है तभी ठीक है,
पलाश,
पलाश ठीक है, साल के पत्ते जैसे लोग सब व्यवहार करते हैं। पहले लोग कुछ दिन पहले तक हमने देखा कि पलंग इत्यादि का तो साधु संत लोग व्यवहार ही नहीं करते थे, अधिक से अधिक चौकी लकड़ी की, तो ये चौकी चल सकती, नहीं तो भूमि पर शयन लोग करते थे। आजकल कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जैसे कि पलंग से नीचे सोने में भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं, पलंग कहते हैं चौकी या कोई चीज़, इसलिए देख सुन करके स्वास्थ्य पर ध्यान कर करके ये सब करना चाहिए। अंततः आहार और विहार का संयम चाहिए और ऐसा करना चाहिए जब हमारे आचार व्यवहार विचार हमारे भजन के अनुकूल रह सके, ये मूल चीज़ है, प्रतिकूल न हो जाए, अनुकूल चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, अधिक नींद न आने पाए, अधिक से अधिक हम हरि हरि भजन कर सकें, सेवा कर सकें, इस प्रकार से अपने शरीर को अधिक से अधिक हम अपना एनर्जी भगवान में दे सकें, अधिक से अधिक हम भगवान का चिंतन कर सकें, अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन कर सकें, बस इधर में अधिक जोर लगाने, इसलिए इन सब नियमों का पालन हम लोग अब पूर्णिमा से आरंभ करेंगे और पूर्णिमा को ही हम लोग समाप्त करेंगे जैसे कि हमारे संप्रदाय। अब हम लोग बृहद भगवतामृत पर आ गए, हम लोगों ने अभी ये श्लोक समाप्त किया था, के मा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार, उसमें ये संक्षेप में बताया गोपियां संसार में सबसे बड़ी सदाचारी हैं, उनसे बढ़कर के और कोई सदाचारी नहीं। सदाचार किसको कहते हैं? सदाचार कहते हैं भक्ति का आचार विचार जो ग्रहण करते हैं यही सदाचार, और भक्ति में सबसे श्रेष्ठ गोपियों की भक्ति, इसलिए उनका ही चरित्र उनका ही विचार सबसे बड़ा सदाचार है, इससे बढ़कर के और कोई सदाचार हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि कोई सदाचारी है तो क्या उन है, इसी पराकाष्ठा है सदाचार की। जो लोग कृष्ण का भजन नहीं करते वो कैसे हैं? असदाचारी। उद्धव जी कहते हैं ये गोपियों ने जिस प्रकार से भजन किया हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमारे अंदर में वो वस्तु ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं हमारे जिस प्रकार से वस्तु ब्रह्मा जी में नहीं है और सब देवताओं में भी नहीं जो गोपी, इसलिए गोपियाँ सबसे श्रेष्ठ। इसलिए असदाचारी कौन है? अपने को कह रहे हैं, नारद जी को कह रहे हैं, ये लोग सदाचारी हैं तभी करें, क्यों? गोपी भाव से वो लोग भजन नहीं कर पा रहे, इसलिए वो उसको बतला रहे हैं। श्रुति भी मृविज्ञान इत्यादि में बतला भी आएगा, श्रुतियाँ जिनको खोज रही हैं किंतु पाती नहीं, किनको? गोपियों की पद पद रेणुधुनि को, रेणु को नहीं पार पाती है, क्यों? उन्होंने जो दुस्त्यज माने क्या, पति पत्नी इत्यादि सबको छोड़ करके भगवान का उस, इसलिए कहते हैं जो लोग सबको छोड़ करके गोपियों का अनुगत होकर के भजन करेंगे वह गोपियों की कृपा से अत्यंत नीच होने पर भी सबसे उन्नत रहेंगे, वो उनका जीवन ही सबसे, ये सब चीज़ों को बतलाने के बाद में नायं श्रियो उंग नितान तरते प्रसाद इत्यादि श्लोक बतला, इसकी एक बार हम लोग व्याख्या कर चुके हैं, पिछले समय पर हम इसकी व्याख्या करें, आज हम लोग चल रहे हैं आशा महो चरण रेण दुषा महो श्याम वृंदावने किमत गुलमलतौषधीना जादुस्तजनु सजन आर्ज पचन चहित्वा भेजे मुकुंद पदवे सुत भेज। साधारण अर्थ ये होगा आशा अहो आसन चरण ऋण दुषाम अहम श्याम। हमारा जीवन सार्थक हो जाता यदि इस वृंदावन में किसी भी गुण लता औषधि घास इत्यादि का हमें जन्म मिल जाता इस वृंदावन। कितनी घासें हैं किसी जगह भी, छोटी छोटी पौधे हैं, गुल्म लता औषधि, इस प्रकार से वृंदावन में हमारा जन्म हो जाता है। और आसाम चरण रेणु श्याम, और ये जो गोपियां जी इनका भी वर्णन किया अभी तक, इन गोपियों की चरण धूलि सेवा करने का सुयोग हमें मिल जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता, सार्थक हो जाता है। क्यों? जादुष्ट जन जिन्होंने, जिसको त्याग नहीं किया जा सकता, अपने स्वजन आर्यपत, आर्यपत माने पति के प्रति जो कर्तव्य है, स्वजनों के प्रति जो कर्तव्य है, अपने बंधुओं के प्रति कर्तव्य है, पुत्र माता पिता सबके प्रति जो कर्तव्य है, जितनी आकांक्षाएं सबको छोड़ छाड़ करके हित्वा भेजो मुकुंद पदवी, मुकुंद की पदवी का भजन किया है। मुकुंद पदवी का अर्थ हम सनातन गोस्वामी बतलाएंगे, उससे हम बतलाएंगे। मोटा मोटी यही समझिए जो भगवान का कृष्ण का उन्होंने कृष्ण की आराधना की है। उनको श्रुति मृ विज्ञान, आज तक श्रुतियाँ भी इस मुकुंद की पदवी को खोजते हुए आज कितने करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए नहीं पा सकते, श्रुतियाँ नहीं पा सकती। तो साधारण लोगों के लिए तो बात क्या, अब सनातन गोस्वामी इसकी टीका में बता रहे हैं। अहो त्रि जगत में सबसे श्रेष्ठ है महालक्ष्मी जी भक्ति के विषय, और ये सब समय नारायण के वस्तक्षल पर विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा सब इत्यादि इनकी कृपा के लिए लालायित होकर के इनकी आराधना करते हैं, इनकी एक कृपा की कोर हो जाए बस उसके लिए। किंतु तथापि ब्रजसुंदरियों ने भगवान की जैसी कृपा पाई थी ऐसे ये लोग नहीं पा सकी। अन्य लोगों की तो बात ही क्या कहूँ। नायम शियो इत्यादि श्लोक में इसको कहा गया लक्ष्मी भी नहीं पा सकी, और लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ कौन है, रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि, ये लोग ही नहीं पा सकी। सब समय उनके निकट रहने वाली, उनके वस्तक्षल पर विलास करने वाली लक्ष्मी जी। भगवान जब देवता कुल में आते हैं जैसे कि उपानंद के रूप में आए और सब रूपों में आए, उनकी लक्ष्मियां होती हैं, वो लोग भी नहीं पा सके। नलिन गंध रुचान, नलिन माने होता है कमल, कमल के समान सुगंधित कोमल और मृदु सुगंध वाली ऐसी जो देवताओं की स्त्रियां हैं, तो उनकी तो बात ही क्या, और संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं या लोग हैं उनकी तो बात ही क्या। गोपियों की सबसे श्रेष्ठ महिमा वहां पर बतलाई गई, राक्षसस्थली में उन लोगों को कृष्ण का ऐसा प्रसाद पाया उन लोगों ने जो किसी के लिए संभव, कृष्ण स्वयं उनके गले में हाथ डाल करके और झूल रहे हैं, उनसे प्रेम की भिक्षा मांग रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं उन्होंने किया। और अंत में कहा न पा रहे हम निर्बद्ध से, ये सब बात इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। ओहो और लोगों की तो बात का वर्णन क्या करूं। इस प्रकार से ब्रज सुंदरियों की सबसे श्रेष्ठ महिमा बतलाई, इनसे बढ़कर तो किसी की महिमा नहीं। अब किसी दुर्लभ पदार्थ के लिए यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करें, आसाम हो चरण रे दुषाम अहो, मैं क्या इस वृंदावन में एक छोटा सा तृण अथवा घास लता गुल्म, गुल्म माने क्या,
छोटे छोटे पौधे,
इतने बड़े पौधे ऊपर से भर जाते हैं, उसमें फूल भी लग सकते हैं, उसमें गंध भी होती है, ये सब गुल्म कहलाते हैं। एक होता है ना बहुत चूहे जिसके गंध से भाग जाते हैं,
रामदाना, मरुदाना,
मरुदाना भी है, और छोटे छोटे इतने बड़े बड़ी जैसे झाड़ियाँ जैसी होती हैं वो फैल जाते हैं, उसका नाम गुल्म ही है। क्यों कहा, क्यों कहा, वृंदावन में गोपियों का नित्य निवास है, कृष्ण का भी नित्य निवास है। अभी कुछ दिन पहले ये सुना कि वृंदावन के सेवा कुंज में कोई एक महिला बैठ गई, अभी 15-20 दिन की बात, और निकली नहीं उसमें, शाम को बंदर तक भी निकल जाते हैं, वो निकली रही और बैठी रही। सवेरा हो गया तो लोग उसको देखा, जो आरती करने के लिए जाते हैं मंगला के लिए गए, तो देखा जो कोई अधेड़ उम्र की कोई महिला बैठी हुई और ऐसे ऊँग सी गई, किसी से बातचीत भी नहीं कर सकी। अस्पताल में ले गए और वहाँ पर जाकर के थोड़ी देर के बाद में वो दम तोड़ दी। अब क्या हुआ कौन जाए, लोग कहते हैं कि रास होता है, ये बात तो हो सकती है, ये कोई झूठ नहीं है, हो सकती है, किंतु उस रास को कौन देखेगा, देखेगा कौन, साधारण आदमी तो देख नहीं सकते। और यदि इसके लिए चेष्टा करेंगे तो यदि मान लीजिए देख लिए, ऐसा हो गया ये अब शरीर रहा ही नहीं, जैसे भी हो शास्त्र इसके लिए प्रमाण है। जो वृंदावन में अभी भी कृष्ण और गोपियां हैं और गोप लोग भी हैं, गायें भी हैं, और वो विलास भी चल रहा है। कोई कोई महापुरुष जो हैं सौभाग्यवान इसकी कभी कभी झलक पा सकते हैं, तो जब गोपियां और कृष्ण हैं तो उनका चलना फिरना जाना अभिसार और सभी काम जरूर होगा। तो गोपियां यदि कृष्ण के लिए मिलने के लिए जा रहे हैं तो उन घासों को पैर रख दिया, उनकी चरण धूली तो कह रहे कि हो क्या मैं इस वृंदावन में गोपियों की चरण धूलि ग्रहण करने के लिए गुल्म और लता इत्यादि किसी के रूप में मैं जन्म ग्रहण कर सकता हूँ, मेरे लिए ऐसा संभव, एक भी कोई हो जाए कुछ हो जाए, चाहे दुब की घास हो जाऊं, चाहे मोथे की घास हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाऊं, वृंदावन में गोपियों की चरण धूलि को प्राप्त करने का मुझे उसी प्रकार से सौभाग्य मिल सकता है। इसलिए कोई भी जन्म हमको वृंदावन में हो जाए, वृंदावन कहाँ पर वृंदावन है, वृंदावन एक तो वृंदावन खास अभी जो वृंदावन है उसकी 5 कोस की 5 मील की परिक्रमा,
10 मील,
और एक बृहद वृंदावन है वो इस यमुना से लेकर गोवर्धन नंदगांव बरसाना इसके अंदर में जितना है ये सब, और एक 84 कोस वाला ये 3 है। ये 3 जो चीज़ें हैं गोलोक वृंदावन से कृष्ण आते समय में इसको ले आए हैं। कभी कभी ये प्रकट होती है, बद्ध जीव भी उसको देख सकता है, और कभी कभी ये अप्रकट, जैसे कृष्ण की लीला चल रही है हम लोग देख नहीं रहे, उसी प्रकार से धाम भी नित्य प्रकट रहने पर भी प्रकट की अवस्था को दूर करके एक दृश्यमान और एक
प्रकट अप्रकट
और एक प्रकट, 3 अवस्था हो। अभी दृश्यमान है जैसा हम देख रहे हैं ना, पेड़ टूटे हुए हैं, सूखे हुए हैं, बंदर घूम रहे हैं, कितने रिक्शे वाले और बदमाश अच्छे बुरे सब लोग हैं, ये दृश्यमान वृंदावन है। इस पर एक पर्दा पड़ा हुआ है माया का, उसके ऊपर में ये सब दिखता है, और इसके बाद में प्रकट, प्रकट लीला के समय में वो ब्रज गोपियों और गोपों के साथ में कृष्ण परिक्रमाओं को लेकर के प्रकट, और एक होता अप्रकट धाम, वो नित्य ही लीला है। तो कहते हैं कि इस वृंदावन में कहीं भी किसी प्रकार से घास भी बन जाऊं, ये कौन कह रहा है?
उद्धव
जी कह रहे हैं। हमारे रूप सनातन जी ने ऐसी कहीं प्रार्थना की है कि नहीं, किया है कि नहीं? देखना, जब मैं घास बन जाऊं, लता बन जाऊं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने ये कहा, तदभूरि भाग्यमिह जन्म किम पटव्यम जजगोकुलेति कतमांग रजो विषेकम जज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंदस्तद्याप्यत्पदरज। उन्होंने कहा जब वृंदावन में बासी चर अचर जो कोई भी हैं उनकी चरण की धूलि हमको मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। किंतु उद्धव जी ने उससे थोड़ी सी उन्नत प्रार्थना दी। क्या? सबकी शिका नहीं, उनमें गोपियों की चरण की धूलि को प्राप्त हो जाऊं। इसी श्लोक में बतलाया, जह दुष्पजन स्वजन आर्ज पतन चहता, जिन लोगों ने कृष्ण के लिए सर्वस्व छोड़ दिया, त्याग, पतियों को भी छोड़ा, तो पतियों को कौन छोड़ा? पतियों को और गोपियों ने ही छोड़ा, इसलिए उसकी पदी स्पष्ट करके इसके बाद में कहा, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षा। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के जो रूपानुग हैं वैष्णव लोग, एक ही लक्ष्य है उनका, बस गोपियों की चरण की धूलि और उसी की दासी बन करके हम लोग आए। यहाँ पर उत्कंठावस्था हमारे उद्धव जी ऐसा कह रहे हैं, आधे श्लोक में वर्णन करिए क्यों। गोप्य ज्या दुष्टजन स्वजन आर्ज, ज्या माने कौन, ज्या माने गोपियाँ। इसमें जो अत्यज्य दुस्तज्य माने कभी नहीं त्यागा जा सकता है, वो पति पुत्र इत्यादि आत्मीय स्वजन आर्यपथ सदाचार धर्म सभी का प्रत्याग करके कृष्ण की सेवा जो करते हैं, मुकुंद पदवी को प्राप्त हुई। कोई मान लें कि विवाहित स्त्री भी है तो अपने पति के सिर पर अपना पैर रख देगी कि नहीं? यह विधि नहीं है, किंतु गोपियां ऐसा कर सकती हैं, यह है वेद की मर्यादा, इसको भी तोड़ सकती हैं। पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, यही हमारा आर्य पथ है। किंतु गोपियां क्या करेंगी, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अपने चिबाए हुए पान को भी उनके मुख में दे देंगी, ये खाओ, और वो प्रीति के साथ में खा लेंगे,
उसमें आनंद अनुभव कर।
ये तो सदाचार नहीं है, किंतु ये भी वो कहते हैं किसके लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए कहते हैं ये कोई भी नहीं पा सके मुकुंद पदवी, किंतु गोपियां पा चुकी हैं, वेद नहीं पा सका, उद्धव जी नहीं पा सके। उद्धव जी अपने चरण की धूलि कृष्ण के मस्तक पर दे सकते हैं कि नहीं? वसुदेव देव की देंगे, माता पिता होकर के भी नहीं दे, किंतु ब्रज का कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, गोपियों की तो बात ही निराली है। अब उसके लिए कह रहे हैं मुकुंद पदवी को प्राप्त किया। क्या मुकुंद पदवी को प्राप्त किया? अर्थात तो उनकी सेवा को प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? वृंदावन के लीला के बाद में ना, उसके पहले ही पाया, अनादि काल से ही, सब समय उन्होंने प्राप्त कर रही हैं, इसको अर्थ ये लिया, वर्तमान काल में लाना पड़ेगा। मुकुंद भेजे मुकुंद पदवी, पदवी का सेवन कर रही हैं, अथवा अनुवृत्ति निरंतर अभी तक भी कर रही हैं, पहले भी किया है, भूतकाल भविष्य वर्तमान की नुकाल, अथवा पदवी, पद माने पद से पदवी होता है, कृष्ण जब चलते हैं ना तो पद से चलते हैं, तो कृष्ण की पदवी, जबकि गोचारण इत्यादि के लिए ब्रज में विचरण करते हैं, अपने पदों से चलते हैं, तो वो जो गमन गमन और आगमन का जो मार्ग है, उस मार्ग का जो भजन करने वाली है, कैसे मार्ग का भजन होगा? दोनों तरफ में खड़ी होकर के बड़ी तीव्र लालसा से उत्कंठा से देख रही। वो एक श्लोक है, प्रातः ब्रजात ब्रजत अविशतश्च सायं गोभी समं कणे तो अस्य निशम वेणुम आगम्य तूर्णम पथ अबला पतिभूर पुण्य सस्मित मुखो सदयावलो। देखो कितना सुंदर वर्णन। प्रातः ब्रजात ब्रजत, कृष्ण प्रातः काल में गैयों को लेकर के सखाओं के साथ में मधुर मधु बंसी बजाते हुए वन में प्रवेश कर उस समय में, और सायं अविशत सायं, और जब वहाँ से वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं उस समय में ये क्या, सस्मित मुखम मंद मंद मुस्कान करते हुए बड़ी उत्कंठा से रास्ते में खड़ी होकर के उनको दर्शन कर रही है और उनका आरती इत्यादि उतार। ऐसी ये गोपियाँ हैं, इसको कहते हैं मुकुंद पदवें अथवा और क्या, दर्शन के निमित्त पूर्वान्न में और अपराह्न में सर्वदाई परम उत्कंठित होकर के उनके गमन और आगमन के पथ को निहारती रहती हैं, प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं, आश्रय कर रही हैं किस चीज़ का, गमन आगमन के पथ को आश्रय करना। ये मुकुंद पदवी अथवा पदवी कहने से एक और भी अर्थ होता है। हम लोगों की पदवी क्या है, रूप सनातन इत्यादि जो है, नारद इत्यादि, इनकी पदवी है भक्त ना, भक्त अथवा वैष्णव। गोपियों की पदवी क्या है, भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में इनकी पदवी है, इससे और कोई पदवी हो ही नहीं सकती है। गोपी, गोपी ही इनकी पदवी है। गोपी का शब्द का अर्थ हमने पहले बतलाया था, इसलिए पदवी माने होता है भक्ति मार्ग। गोपियों से बढ़कर के कृष्ण का कौन भक्त है, उनसे बढ़कर के कौन है नहीं। अभी श्रृंगेरी मठ के सुना है कोई जगत गुरु आए हैं,
शंकराचार्य,
कोई तीर्थ आए आए हैं ना, लोग बड़े दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कभी मुख से वृंदावन या गोपी शब्द का उच्चारण किए होंगे, वो नहीं कर सकते, वो अभी राम मंदिर बना रहे होंगे अधिक से अधिक, अथवा मोक्ष की बात करें, इसे क्या होगा, हम मोक्ष मिल जाए, भगवान में हम लोग मिल जाएंगे। कृष्ण नाम का उच्चारण भी नहीं करेंगे जगत में, ब्रज की तो बात और भावना की तो बात अलग रही, और यहाँ का पंडित समाज जुटा है उन पर कितने कितने रुपए खर्च करके बना रहे हैं सब स्वागत समारोह, ठीक है समारोह तब होना चाहिए, किंतु हम तो साधु उसी को मानते हैं जो गोपियों के भावों की प्रशंसा करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनकी भक्ति की बात करते हैं, नहीं तो वो साधु हम लोग उसको मानते ही नहीं। तो इसी को कहते हैं कृष्ण की पदवी है भक्ति मार्ग, और उस भक्ति मार्ग में प्रविष्ट होकर के या आश्रय जो कर रही हैं उनमें सबसे अधिक सामर्थ्य है गोपियों में। तो कहते हैं कि इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। तो जो लोग मुकुंद की प्राप्ति के लिए, उन गोपियों को तो बात छोड़ दो, जो लोग अभी भी कृष्ण के मुकुंद की भक्ति को पाने के लिए, जिनको मिल गया है, गोपियां को तो मिल गया है, और भक्ति से ऊपर प्रेम तक महाभाव तक मिल गया है, और जिन लोगों को भी मिला नहीं अभी साधक हैं, वो साधक लोग मुकुंद की पदवी तक भक्ति को पाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं और आर्य पद का भी प्रत्याग कर चुके हैं, मैंने क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ना हम विप्रो न च नरपति ना विवश्यो न शूद्र इत्यादि विचार को धारण किए हुए हैं, और भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं, क्या करते हैं, नाम के द्वारा ही हमारा जो कुछ है जीवन में करना हो जाएगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल कलऊ नाश्ते व नाश्ते व नाश्ते हो जाए, इसको धारण कर रहे हैं और हरिनाम करते हैं। भले अभी सिद्धि नहीं है कोई बात नहीं, चित्त को स्थिर रखता किया है गुरु और वैष्णव की सेवा में। प्रतिदिन आरती करते हैं, नियमित रूप में दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, यहाँ का जो सदाचार है पालन करते हैं, वृंदा देवी की परिक्रमा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं। ऐसे लोग भी यदि हों तो उनकी चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए यदि दुख की घास हो जाए तो भी जीवन सार्थक था। इन गोपियों की तो महिमा को तो और अधिक बात की जाए। यदि कहो स्त्री जाति के लिए पति इत्यादि को त्याग करना, आर्यपद को त्याग करना, वेदविरुद्ध काम करना, ये तो ठीक नहीं है। गोपियों ने किया तो ये तो ठीक नहीं किया, उसके लिए कह रहे हैं सज्जन गणों के भी परम पूज्यपाद ये गोप वनिताएं हैं, ब्रज की स्त्रियां हैं, ये कभी भी आर्यपद के विपरीत नहीं चल सकती। ये तो उन लोगों के लिए समझाया गया है जिनकी बुद्धि अधिक तीव्र नहीं है, बुद्धि अधिक नहीं है उन लोगों के। वेद का यथार्थ तात्पर्य क्या है, भक्ति कहाँ से आई? हमारे वेदों में नहीं है क्या भक्ति? वेदों में तो है जस्य देवे पराभक्ति इत्यादि की बातें हैं। वेदों में भक्ति रेव नायति इत्यादि में भक्ति का वर्णन वेदों में है, उसी को परिस्फुट रूप में गोपाल तापनी में बतलाया गया, वो भी वेद है, और उसको भी श्रीमद् भागवत में और भी परिस्फुट रूप से बतलाया। इसलिए वेदों में भी गोपियों की भक्ति की बातें बड़ी गुह्य रूप में बतलाई गई है ही नहीं, ऐसा नहीं जो कहीं है ही नहीं हुआ तो वो वेद में भी नहीं, और जो वेद में है वो जरूर है। इसलिए वेद में भक्ति की बात है, इसलिए ये यहाँ पर बतला रहे हैं। जो गोपियाँ कभी भी वेद विरुद्ध नहीं कर सकती हैं, इसी को वो बतलाया गया केमा स्त्रियों बनचरी का विचार दुष्टा, इसीलिए बतलाया गया। इसलिए जितना सदाचार गोपियों में है किसी में नहीं है, यहाँ तक ही बतलाया गया है। अरुंधति कौन है? अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, अनुसुईया जी
पत्नी पत्नी
पत्नी की पत्नी, जिसने सेवा सीता जी को भी आशीर्वाद दिया। अरुंधति ये और भी उमा जी, उमा जी कौन है? शंकर जी की पत्नी। ये सब गोपियों से पातिव्रत धर्म सीखती हैं।
उमा
रमा सत्या ये तो उनके अंश हैं। ये सब जो पातिव्रत धर्म है, वेद धर्म है, ये सब शिक्षा करती हैं कहाँ से? जो कृष्ण के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए ये सब सीखती हैं। इसलिए गोपियों से बढ़कर के कोई सदाचारी नहीं, इसलिए इनकी चरण की धूली हम प्राप्त हो जाए। जिन्होंने गोपियों ने कृष्ण की पदवी को जैसा प्राप्त किया उन्हें प्राप्त, आज यही तक कल इसकी आगे तक पंचाकल
पुत्रेति तन्मयतया सर्वो ज्ञेयो तं सर्वभूतैकम् तवैवास्मि तवैवास्मि
महाप्रभु जी के नित्य परिचर सनातन गोस्वामी जी और तिरुभाव का उसी के उपलक्ष्य में गोवर्धन में प्रतिवर्ष गोवर्धन की परिक्रमा होती है। साधु संत लोग अपना मस्तक कुंदन कर और कीर्तन करते हुए मन श्री गंगा की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा वहाँ से होती है जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी का भजन होती है वहीं से होती है टकलेश्वर से आरती होने पर उनकी समाधि यहाँ नहीं है समाधि वृंदावन में है जहाँ पर वो भजन होती है जहाँ पर वो रहते थे मदन मोहन जी को जहाँ पर स्थापित किया था सबसे पहले वहाँ पर उनकी भजन होती के पास ही में उनका समाधि दी है सनातन गोस्वामी जी के संबंध में और इसके संबंध में बताऊँगा अभी आसाम हो चल रहे शाम का जो बाकी थोड़ा सारा तैयार है वो संस्को पूरा करके कल इसको या तो मैं मैं हूँ मेरा जुड़ी हो जाए और गोपियों की चारों की जुड़ी हमारे सिर पर तो इसी में आपने जीवन की साक्षात्कार समझना कहते क्यों गोपियों की चारों से होता है तो इसके लिए बताया जागृत स्वजन आज बसंत ही बात भेजे मुकुंद कर दे उन्होंने अपने दुष्ट स्वजन स्वजन आर्य आर्य पर स्वजनों को छोड़कर लोग लज्जा इत्यादि को जलाने ही दे सकते वेद पद का भी अतिक्रमण कर मुकुंद पदवी को प्राप्त किया था इसके लिए ये मनुष्य बड़ी भारी बात हो गई तो उसके लिए बताया था सूत्र जी के विज्ञान अरे श्रुतियाँ जिनको आज तक खोजते 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 हार गई और खोजते ही रह रही हैं अभी तक उनको मिला नहीं और वो उसको प्राप्त हो चुकी हैं इसलिए गोपियों की कितनी बड़ी बात है उसी में हम लोगों ने ये बताते हैं कि मुकुंद पत्नी किसको कहते हैं मुकुंद पत्नी के लिए हम लोग ये बताया था पहले बताया था अनुवृत्ति मैंने निरंतर उनका सेवन करती हूँ इसकी कृष्ण के चरणों की सेवा करती हूँ अथवा दूसरा मतलब है कृष्ण गोचार करने के लिए अपने चरणों से जिधर उधर जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए वो दोनों तरफ में खड़ी करती हूँ कौन है अथवा स्वयं और सवेरे और शाम को कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं या वहाँ से आते हैं तो उनके लिए प्रतीक्षा करती रहती है भाई लड़के लड़के खूब आना प्रवचन में गड़बड़ दूसरी बात पदवी मुकुंद पदवी भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग को मैं जो प्रविष्ट हो गई हूँ भक्ति मार्ग में मैं भी भक्ति की अंतिम स्थिति को प्राप्त हो चुकी हूँ जिसको वेद अभी भी नहीं खोज पाए अथवा एक और अर्थ दिया मुकुंद पद्मी मुकुंद भी जिनके चरणों का आश्रय कर रहे हैं कैसे अंतर ध्यान हो करके गोपियाँ उनको खोज रही हैं और कृष्ण उनके पीछे पीछे चल इसका प्रमाण है कुछ हाँ गोपियों ने देखा कृष्ण के चरणों के चरणों में उनका भी चरण चिन्ह है इसलिए मुकुंद पद्मी का एक ही यही अर्थ होगा किसी को वेद आज तक शास्त्र लोग खोज करके नहीं पाए जो उनके पीछे पीछे चले हैं और कृष्ण भी उनके चरणों की सेवा करें जैसे सेवा करें ये वेद को भी प्राप्त अने राग भी तो नूनम राधा शब्द का अवस्था है तो अनया मने राधिका के द्वारा आराधना कृष्ण की आराधना होती है इसलिए इनका नाम राग और राधिका भी नाम किस लिए है कृष्णेन आराधिता इसलिए कृष्णेन जस पदवी आराधिता जिसके द्वारा कृष्ण जिनकी पदवी की अर्थात तो जिनके भावों का अनुगमन करते हैं उसको प्राप्ति के लिए गौरजन इत्यादि लेना पड़ता है उनको इसलिए यहाँ तक मुकुंद पद्मी का अर्थ ये भी होगा अरे जबकि भक्ति मार्ग में चलने वाले का जो कभी पूरा नहीं चल पाए हैं उन्हीं का उन्हीं की महिमा वर्णन करने में वेद इत्यादि सब असमर्थ है। तो इन गोपियों को जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है उनकी सेवा को, उनकी महिमा का वर्णन किया है, ये संभव नहीं है। यदि कहो ये स्त्री जाति के लिए पति इत्यादि का छोड़ना वेदों में कहा गया है कि ये ठीक नहीं है, तो गोपियों ने उसको छोड़ करके तो वेद के विपरीत कार्य किया, कहे नहीं ऐसा मत सोचो। इसी के लिए कह रहे हैं मुकुंद पद्मी श्रुति भी प्रमेज्ञा, श्रुतियाँ भी अद्यापि आज आज भी मुकुंद पद्मी का अनुसंधान कर रही हैं। मुकुंद पद्मी मैंने जैसे गोपियों ने जिसको प्राप्त किया है, विशेष करके गोपियों का जो प्राप्त प्रेम है, विशेष करके वृद्ध जैसा लग रहा जो पार्थिव भाव है, इसको वेद आज तक खोल गया। क्योंकि उनकी साध्य वस्तु है मुकुंद पद्मी, उसके लिए उनको लोभ हुआ है। भागवत में भी देखा जाता है वो चाहती हैं मिल गया कि नहीं, यह ऐसा पता तो नहीं चलता, किंतु तो इसमें लिखा जाए नहीं प्राप्त होती है सनातन गोस्वामी। अतः धर्म ज्ञान के उपदेश करने वाले वेद इत्यादि की के लिए भी गोपियों की महिमा आप पदवी पाना बड़ा भारी कठिन है, दुर्लभ है। कहते हैं कि गोपियों ने अपने स्वजनों को आर्य पद को माने पतियों को प्रत्याग किया, कृष्ण से मिली, कृष्ण की सेवा की, कृष्ण की सेवा ग्रहण भी की, इसमें हानि या पत्रवाय नहीं है, दूसरों के लिए होगा, वेद में यही निर्धार यही तक किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु गोपियों ने किया। ये कह रहे हैं कि वेद जो है इसको खोज रहे हैं, अर्थात तो उनका प्रतिपाद्य विषय हो गया गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति, इसलिए वेद भी उनको अनुसरण करते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने ऐसा ही कहा, त्रैगुण ने विषय वेदा मैं स्त्री गुणों को बात, वेद जो है वो त्रिगुण वैगुण्य विषय वेदा, जो कुछ वेदों में वर्णन किया गया है स्पष्ट रूप से वो त्रिगुण विषय वर्ण है। त्रिगुण त्रिगुण मैंने क्या उनका भोग भोगेंगे या फिर जगत में आएंगे जाएंगे, इसलिए अर्जुन को कहा नैस्त्रैगुण्यो भव नैस्त्रैगुण्य, वेदों के विषयों से तुम अधिक हो जाओ। पहले भी यहाँ पर और भी कहा गया है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसका पाठ किया था, किम ब्रह्म जन्म भी अनंत तथा ब्रह्म जन्म के भी क्या प्रयोजन है जो वेदों के ज्ञाता है, ब्रह्म जी तो वेदों के ज्ञात माने वो उनके मुख से ये सब प्रकाशित हुए हैं। इसलिए वेदों को वेदों में जो लिखा गया है धर्म आचरण पति इत्यादि का प्रत्याग नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और सब जो बातें हैं, गोपियों का यह भाव वेदों से भी परम निरपेक्ष है। वेदों में भी वेद जो कर रही है उस वेद के सब उपदेशों को तोड़ करके वो आगे जा रहे हैं। इस श्लोक में यही बतलाया गया गोपियों का जो अनुराग है वो निरुपाधिक है, वेद में वर्णित जो धर्म इत्यादि है वो सुपाधिक है। कहते हैं जो ब्रह्मादि
सब जितने भी देवता लोग हैं वो उनको भी ज्ञान प्रदान करता है। कौन वे निवेदन से श्रेष्ठ है, उनके पूज्यतम श्रुतियां हैं, इसलिए श्रुतियां सबसे उत्कृष्ट हैं, प्रमाण्य हैं। तो कहते हैं श्रुति ही प्रमेज्ञान, श्रुतियां भी उनके लिए खोज रहे हैं अभी तक नहीं पाए। लक्ष्मी श्रेष्ठ है ना वेद श्रेष्ठ है, श्रुति श्रेष्ठ है, लक्ष्मी जी उनसे वेदों से बहुत श्रेष्ठ है। वेद डायरेक्ट रूप में सेवा नहीं करते किंतु लक्ष्मी जी ये सब करते हैं। जब लक्ष्मी जी को ही नहीं गोपियों का भाव मिला तो इन वेदों की तो बात क्या। भावार्थिया की श्रुतियों ने धर्म आदि के अपेक्षा देखा है, वो धर्म की अपेक्षा उसको तोड़ नहीं सकती श्रुतियां, किंतु बड़े सुंदरियां सबको छोड़ करके पन्न निर्मित होकर के कृष्ण की सेवा करती हैं, इसलिए श्रुतियां उनका अन्वेषण करती हैं। इसमें एक और विचार है, अभी बताया गया है कि उपनिषद चरित्र की गोपियां थी तो उनको तो भगवान मिले कि नहीं मिले उपनिषद चरियों को, तो उसके लिए उन्होंने स्वयं उठाया। इसलिए उपनिषदगण भगवत भजन विशेष लोभ है वृंदावन गोपियों की कैसे ये लिखा है गोपियों ने उपनिषद चरी जो श्रुतियां हैं वो भगवत भजन विशेष के द्वारा गोपी सरी